ओम शांति। 23 जुलाई 2023 आज की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्न। जिस आत्मा को सब कुछ प्राप्त हो गया है उसकी निशानी होगी कि वह सदा संतुष्ट रहेगा और सदा प्रसन्न रहेगा। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 16 मार्च 1995 को। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे। सर्व प्राप्तियों के दाता और संपूर्ण बाप के बच्चे, बाकी कोई भी संपूर्ण क्यों नहीं। एक संपूर्ण बाप है, बाकी कोई संपूर्ण बाप नहीं क्यों। वो पांचों तत्वों को कंट्रोल करता है और क्योंकि पांचों तत्वों के वशीभूत नहीं होता, उनका कंट्रोलर रहता है, वो कभी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। हम क्षय करने के कारण क्या हो जाते हैं, संपूर्ण नहीं रहते, संपूर्ण नहीं रहते। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। हर एक को अधिकार दिया है कि वो सब कुछ प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसी को 20 दिया हो। बाबा ने अपनी तरफ से किसी भी आत्मा को कम या अधिक नहीं। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे, बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया, अपने में अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है, बाप को सर्व शक्तिमान, वह सागर संपन्न कहा जाता है। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया, कहां तक अपना बनाया। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते उतना नशा और खुशी रहे। बाप ने सर्व दिया परंतु बच्चे जितना अपने में उन गुणों को धारण करते उतना उनको नशा भी रहता, उतना उनको खुशी भी रहती। मेरा खजाना है, मेरा खजाना है, दिया किसने, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर उसे अपना बना लिया। दिया बाप ने, आपने जितना धारण किया उतना आपका बन गया। तो क्या देखा कि अपने बनाने में नंबर वार हो गए, बाबा देने में नंबर एक, सबको एक समान देता, पर तो लेने में सब बच्चे क्या हैं, नंबर वार, पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने नंबर नहीं बनाए कि मैं इसको 100 दूं, इसको 99 दूं, इसको 80 दूं, इसको 70 दूं, इसको 60 दूं, लेकिन अपने धारणा की यथाशक्ति ने, धारणा की यथाशक्ति ने नंबर वार बना दिया। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक, अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या है? अमृत वेले से रात तक जिसको ये नशा रहता है प्राप्तियों का, और खुशी रहती है उससे प्रारब्ध का, उनकी निशानी क्या है? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता, कि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं, वो हो जाते हैं संतुष्ट मणि। आज दूध पीने के लिए नहीं मिला, आज सवेरे से एक बार भी चाय पीने को नहीं मिली, आज खाने में मजा नहीं आया, वो कभी नहीं बोले, कभी नहीं, संतुष्ट है तो वो बोलेगा ही नहीं ना। आज गर्मी ज्यादा है, उसे कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी, उसे कंप्लेंट है तो वो संतुष्ट नहीं, कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी किसी भी आत्मा के प्रति। वो सदा संतुष्ट मणिबान दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहे, उसके व्यवहार से सबको लगेगा ये संतुष्ट आत्मा। पानी पीने को नहीं मिला, ये नहीं कि पानी पीना नहीं है, पानी पियो, पानी को प्राप्त करने के लिए पूछो, परंतु फीलिंग नहीं आया कि नहीं मिला तो क्या करो,
आवाज खराब।
उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा, कोई प्रश्न नहीं, उसने ऐसे क्यों किया, क्या किया, नो प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं, प्रसन्न होगा क्यों, क्या, कैसी, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब हो, ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त क्या है? सदा प्रसन्न रहते हो, प्रसन्नचित रहते हो, या कभी प्रसन्नचित और कभी प्रसन्नचित रहते हो? क्या है? तीन क्वेश्चन दिए। वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे जो आएंगे ब्राह्मण उनों का है? आप ही हो। तो जब कोई आप प्राप्ति होती है ना, आप प्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। मेरे को ये नहीं मिला, लेट हो गया, मेरे को इतना रह गया, जितना मिला उतना ही मिलना था, और मिलना है तो मिल जाएगा, और नहीं मिलना है तो मेरी थाली में भी आया है वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? क्यों असंतुष्ट हुआ? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव, उसने मेरे को नमस्ते नहीं की, बस असंतुष्ट हो गए। कोई भी बात की कमी महसूस हुई, मैंने 10 बार पानी मांगा, बस असंतुष्ट हो गया। वो समझ में नहीं आया ना, मैंने 10 बार पानी मांगा, यही इज्जत है इनके घर की, क्या समझते हैं अपने? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है या विनाश के समय का गायन? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? संपन्न विनाश तक होंगे या अभी होंगे? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी जो सदा संतुष्ट रहती हैं? बहुत है, आप तो बहुतों ने खड़ा कर दिया। अच्छा, आप पेपर ले लेगा, अच्छा पेपर। जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं, माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं, माया हार जाती है। माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं, माया तो हार जाती, लेकिन क्या हम विजयी हैं? जो ऐसे हैं वो हाथ उठा। सदा शब्द याद रखना, अभी जीत गए और अभी हार गए, ये नहीं, सदा जीत चाहिए, फिर तो हम जीत गए थे और तू शाम तक हार गए, माया ऐसी आ गई, वातावरण ऐसा था, लोग ऐसे आ गए, उनके विचार ऐसे थे। बहुत थोड़े हैं, पहले बहुत थे, अब क्या हो गए? कोटों में कोई है? क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना आए, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा कौन सी मात्रा? फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों को भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर दे, औरों का भी प्रश्न नहीं उठने दे। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे, हाँ ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूं, होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उसके साथ मिलकर बैठ जाएंगे, उसके प्रश्न को अंडरलाइन कर देंगे, आपका प्रश्न ठीक, टेका तो दे दिया ना, टेका सुना है कभी आपने? टेक आरती किया कभी? टेक आरती की है कभी? पढ़ी है आरती? पढ़ी थी ना, उसमें कहीं टेक लिखा होता था? आधे भगत है ये, टेक आरती में एक शब्द लिखा होता था लाइन पूरी होने पर टेक, उस लाइन के बाद टेक लिखा जाता है कि ये दोबारा बोलनी है। क्यों ध्यान देते? आप भगत थोड़ा हो, यानी जो भगत है उनका काम है ध्यान देने का। टेक माना किसी लाइन को दोबारा बोलना, ठीक है? तो बाबा कहते उसने कहा ये गलत बात है, और आपने भी उसने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी कहूंगा ये गलत बात, तो आपने क्या कर दिया? उसको टेक दे दिया, दोबारा दोहरा दिया ना, जैसे ओम जय जगदीश हरि एक बार बोलेंगे और दोबारा बोलना है तो उसके साथ ओम जय जगदीश हरि दोबारा बोल देंगे, आरती में होता है ना, तो उसको टेक बोलते हैं। किसी लाइन को आप चार लाइनें होती है ना, एक लाइन को दो बार बोलते हैं, तो वहां उसके साथ लिखा होता है टेक, किस लाइन को दो बार बोलना। हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन होता है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई, वास्तव में वैसे एक का क्वेश्चन था और अभी वो दोनों का हो गया। एक ने क्वेश्चन उठाया कि ये तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब वो क्वेश्चन उसका था, उसने भी उसमें टेक दे करके अपना भी क्वेश्चन बना। अभी दो का हो गया, थोड़ी देर में चार का हो जाएगा, तो प्रसन्न चित वाइब्रेशन की बजाय कौन सा वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता जा रहा है? प्रसन्न चित्त। सारे प्रसन्न चित्त ही बनते जा रहे। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो पोस्ट आप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति भी या मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए भी क्या बना देता है? प्रसन्न चित्त बना दे। प्रसन्न चित्त नहीं तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ के गीत पास नहीं होगी, व्यर्थ की गति पास नहीं। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते। फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसलिए मेरे से भी हो गया। इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैं तो 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते, कहते हैं बाबा आप समझो ना, अकल नहीं है ना बाबा को, आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करूंगा। 60 बार कहा उसने। फिर मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं कोई भगवान तो ना बन गया हूं, पुरुषार्थी हूं ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, 1 बार आ गया, थोड़ा तो आएगा ना। फिर बाप को भी समझाने लगते, जहां जो निमित्त है उन्हों की बहुत कथाएं, उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना। ऐसे ऐसे की माला जपते रहते, बाप दादा सदा इशारा देते हैं कि ऐसी बातें दो अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती हैं, जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना और व्यर्थ कर और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया था ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे उसका, उसकी तो दिल खाली हो गई हुई और आपने अपनी दिल खाली की के भर ली, भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो फिर महसूस नहीं होता कि ये रॉन्ग है क्या राइट, ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि में बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। व्यर्थ संस्कार बुद्धि को सही निर्णय नहीं करने देगा, इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है क्या है, अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो, कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। क्योंकि भूलती प्राप्ति भूलती नहीं है, ज्ञान की पॉइंट भूल जाती है परंतु जो प्राप्त किया है वो नहीं भूलता, पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन बाबा से जो पाया है वो नहीं भूलता। बाप से क्या क्या मिला है, बाप से कुछ मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, वैरायटी आपको पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, कौन कौन सी प्राप्तियां देखो, प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति कितनी है, योग की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, शक्ति याद है या भूल गया, शक्ति याद है या भूल गई, योग की शक्ति क्या होती है, ज्ञान की शक्ति क्या होती है, योग की शक्ति क्या होती है, कभी बताया कि नहीं बताया, ज्ञान को अपने जीवन में जितना प्रयोग करेंगे उतना अनुभवी होते जाएंगे ना। बाबा की श्रीमत पर चलने को जितना बार ज्यादा करेंगे उतना अनुभवी होते जाएंगे ना। अनुभव कैसे बनता है? बार बार करेंगे तो अनुभव को शक्ति कहा जाता है। अनुभव को इतने समय से हमने इसको प्रयोग किया है तो वो हमारी क्या बन जाती है? शक्ति। कि वो सारे शराब पीते रहे, मैंने शराब नहीं पी, इतने सालों तक नहीं पी, तो मेरी क्या बन गई? शक्ति। ये दो चार दिन से नहीं पिया तो उससे कोई शक्ति नहीं बनी, वो दो चार दिन की शक्ति है। सारा जीवन मैंने नहीं पिया उसकी शक्ति है, वो फिसल नहीं सकता, वो कभी फिसलेगा नहीं कि चलो आज पी लेते हैं कोई बात नहीं। मतलब कहने का है कि शक्ति कब बनती है? जब हम उसे बार बार प्रयोग करते हैं। ज्ञान की बातों की चर्चा करने का जितनी बार सुनाएंगे उतनी बार हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी बार हम योग लगाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। तो वो शक्ति क्या है? प्राप्ति। वो एक नशा है, वो एक खुशी है, वो प्रसन्नता है। और जो कभी कभी पी लेता हो उसके पास वो नशा नहीं आ सकता, वो कभी भी फिसल सकता है, वो सदा संतुष्ट में। दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है? कौन कौन से दिव्य गुण जो देवताओं में थे वो आपके अंदर आ गए? सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता। आपने चार बार मधुरता बोला, 50 बार मधुरता बोला, 60 बार मधुरता बोला, फिर एक बार आवाज खराब हो गई, आपका मधुरता वाला गुण खत्म। आप सदा मधुर नहीं रहे, सदा सहनशील नहीं रहे, धैर्यता सदा नहीं रही। कभी भी धैर्यता नहीं होनी, कभी भी सहनशीलता नहीं होनी, बस दिव्य गुण सदा। तो इन प्राप्तियों को देखो कि मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, कितना मैंने बाबा के साथ आकर के अपने जीवन में परिवर्तन किया। प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है? बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये ज्ञान है, मेरे में ये ज्ञान है। क्योंकि एक गुण को भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, कि एक विकार भी आप में आया तो सारे विकार उसके पीछे पीछे आ गए। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, बार बार आप कहते हो कि मेरे को मैं दिखावा करता हूं, क्रोध करता हूं, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ आपके पास लोभ भी होगा, अहंकार भी होगा, सारे होंगे। ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्ज रूप में होते हैं तो कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उनों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को देखो रखो लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप को का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी कि मैं बाबा का बच्चा बना हूं, मेरे को ये प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्ति इमर्ज होगी। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाए। और सदा आप संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो। दूसरा मान, तीसरा शान, नाम मान शान, नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो, प्रश्न पूछ रहे। दुनिया वाले नाम मान शान प्राप्त करना चाहते हैं, आप बताओ आप भी क्या चाहते हो, आप भी यही चाहते हो ना कि हमारा नाम हो, हमारी मान हो, हमारा शान हो। हद का चाहते हो या बेहद का, अंतर आ गया। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है, ये देवता हैं, उतना और किसी का है नहीं। तो आप अपने नाम को देखो, सबसे सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है, आपका नाम कौन जपता है, नहीं स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। किसका नाम बाबा जपेगा, जो पूरा बाबा की श्रीमत पर चलेगा, जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा उसका नाम क्यों लेगा। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा, आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नाम ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूं, सेवा नाम दूसरे का हो जाता है, तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ, सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा है भाई, किसी ने आपका नाम नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ गया। बाबा ने, बाबा के पास तो आपका नाम है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, उसके दिल में क्या था, राम का नाम देखा है पक्का। कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो, क्योंकि मेजोरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है और आप राइट हो वा रॉन्ग, वो रॉन्ग, आप राइट हो वो रॉन्ग है, पर रॉन्ग का नाम हो रहा है राइट का नाम नहीं हो रहा, फिर भी उसका नाम होता है आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। और यदि आपने झगड़ा कर लिया तो विजय माला में से आपका नाम, इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इसी रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। आपका मान कितना, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, भगवान ने आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया, कितना मान आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवता का चित्र होगा तो कितना मान से उसको देखते। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं, तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। आप चैतन्य में हैं तब भी आपका मान है, अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता, तो चित्रों को कैसे मिलता। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, कैसे डबल पूजे जाते हैं, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। बाप सिंगल है तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा, आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते हैं, पूछते ही नहीं हैं, ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान, कैसे है, परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम ये परछाई है, ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है, अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है, सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया, तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या होगी। तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या होगी। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो, जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते, अभिमान को क्या समझ लेते हैं, शान समझ लेते हैं, और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपना अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी, ये अभिमान की निशानी, ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ की बजाय मिक्स होता है, और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो, तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प रूप से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है, और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भाव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भाव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं। चार्ज और सेवा का डबल लॉक लगा दो, समृद्धि स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। अपनी स्थिति कैसी बनाओ? निर्माण चित बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।